الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ناظرین کرام، رمضان المبارک عفت اور پاک دامنی کی آبیاری کا مہینہ ہے. اس کی خواہش یہ ہے کہ ہمارے اندر ایک ایسا پاک دامن انسان پیدا کرے جس کی پاک دامنی پہ کل خدا اتنا راضی ہو کہ اسے اچھی سی اچھی جنت عطا کرے. یہ رمضان تقوی کی جس طرح سے آبیاری کرتا ہے، تقوی کو جس طرح ہمارے دل کے اندر اتارنا چاہتا ہے، وہ اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک ہم اپنی نگاہوں کو پاک نہ رکھیں، ہم ادھر ادھر کی ایسی حرکات و سکنات میں مبتلا نہ ہوں جو ہمیں تقوی سے اور پاک دامنی سے دور لے جانے والی. جب ہم نے اصولی گناہوں کو پڑھا تھا تو اس وقت ہم نے گناہوں کے اندر سب سے پہلی چیز جو پڑھی تھی وہ فحشا تھی. اب سورہ بنی اسرائیل کی جن آیتوں کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو. قریب بھی نہ پھٹکو، اس کے کچھ معنی ہیں. یعنی زنا تعارف کی چیز نہیں ہے، سب لوگ جانتے ہیں. قریب نہ پھٹکو کو ذرا تھوڑی وضاحت چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم ان کاموں میں ملوث نہ ہوں، ان جگہوں پر نہ جائیں، ان اعمال سے دوچار نہ ہوں کہ جو ہمیں اس شنی فعل کی طرف لے جائیں. یعنی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کی سرحدوں سے بہت پرے رہیں، اتنا دور رہیں اتنا دور رہیں کہ یہ چیز ہمارے قریب نہ آنے پائے. قرآن مجید کا یہ جو مطالبہ ہے کہ لا تقربوا الزنا، اس کے لیے پھر اس نے ایک پورا قانون دیا ہے سورہ نور کے اندر، جس کو مردوں اور عورتوں کے باہم ملنے جلنے کے جو آداب ہیں ان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. ان کا تذکرہ یہاں اس لیے ضروری ہے، یہ اگر ہم اپنی تبدیل ہوتی ہوئی معاشرت کو دیکھیں جس میں مغربی اثرات بھی آ رہے ہیں اور ٹی وی اور ریڈیو کے اثرات بھی آ رہے ہیں اور فحاشی بھی عام ہوتی چلی جا رہی ہے، بے لباسی کا بھی زمانہ آتا چلا جا رہا ہے، تو اس زمانے میں ہمیں وہ کون سی چیزیں اپنانی ہیں، بلکہ کہنا چاہیے ہر زمانے میں وہ کون سی چیزیں ہمیں اپنانی ہیں کہ جو ہمیں اس معاملے میں بڑے گناہوں سے بچا کے رکھے گی. تو سورہ نور میں جو پہلا مطالبہ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی مردوں اور عورتوں کا آمنا سامنا ہو تو ان کی نگاہیں نیچی ہونی چاہیے. یعنی ہم انہیں گھور کر نہیں دیکھیں ایک دوسرے کو، ہم پیغام رسانی نہیں کریں آنکھوں سے، پیغام محبت نہیں بھیجیں، یہ چیز آنکھوں سے نہیں ہونی چاہیے. آنکھوں کے اندر پاک بازی ہونی چاہیے، صاف ستھری نگاہ ہونی چاہیے. بس آپ کی نگاہ پڑ گئی، ٹھیک، پھر پیچھے ہٹا لیجئے، گھور کر دیکھنا یہ ممنوعات میں سے ہوگا. تو پہلی چیز، مرد و زن جب اکٹھے ہوں تو ایک دوسرے کو گھورنے کا عمل، پیغام رسانی کا عمل، نگاہوں ہی نگاہوں میں تولنے کا عمل نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلا مطالبہ ہے لا تقربوا الزنا کے بارے میں، کہ ہمارے آپس میں جب نگاہیں ملیں تو وہ حیادار ہونے چاہیے، ان کے اندر حیا ہو، وہ شرم سے جھکی ہوئی ہوں، وہ ایک دوسرے کے احترام میں جھکی ہوئی ہوں. یہ احترام کے لفظ سے میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کا مطالبہ ٹھوس قانون نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ انسانی احترام، اقدار کے احترام سے اٹھا ہوا ہوتا ہے. اس کے اندر ایک روح ہوتی ہے جو اگر میرے اور آپ کے اندر ہو تو ہمیں قانون کے سہارے کی اتنی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ وہ چیزیں ہی ہمیں روک لیتی ہیں جو ہمارے ضمیر کا حصہ بن گئی ہوتی ہیں. جیسے حیا ہے، حیا اللہ نے ہمارے ضمیر کا حصہ بنا کر بھیجا ہے. حیا باختہ انسان بڑی دیر کے بعد ہوتا ہے، بڑے عرصے تک اللہ تعالیٰ کے قانون سے وہ کھیلتا رہتا ہے تو پھر جا کر وہ حیا باختہ ہوتا ہے. اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفصیل سے سمجھایا ہے کہ اس کو یوں سمجھو کہ ایک ہمارا ضمیر جو ہے وہ ایک سلیٹ کی طرح ہے. اس سلیٹ کے اوپر جب آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے. یہ سیاہ دھبا اگر ہم توبہ کریں تو دھل جائے گا، اور اگر ہم توبہ نہیں کریں تو یہی لگا رہے گا. اگلا گناہ کریں گے تو اس کے آگے لگ جائے گا، پھر توبہ نہیں کریں گے پھر لگا رہ جائے گا، توبہ کر لیں گے تو مٹ جائے گا. یہاں تک کہ اگر ہم توبہ نہیں کرتے رہیں اور اس طرح کے گناہ کرتے رہیں تو ساری سلیٹ سیاہ ہو جائے گی. تو ضمیر سارے کا سارا سیاہ جب ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا وہ ضابطہ عمل میں آتا ہے جس کو ختم قلوب کہا جاتا ہے، کہ پھر دل کے اوپر مہر لگا کے اس کو سیل کر دیا جاتا ہے. پھر اس کے اندر حق نہیں جا سکتا، پاک دامنی نہیں جا سکتی، حیا نہیں جا سکتی. پھر اس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے اندر یہ حیا نہیں ہے تو جو جی میں آئے کرو، پھر کون روکنے والا ہے؟ फिर कल क्यामत वाले दिन पता चलेगा कि क्या मामला होना है। दुनिया के अंदर अब तुम्हें रोकने वाली कोई चीज नहीं। दूसरा जाप्ता यह है कि हमारा लिबास सातिर हो। सातिर लिबास जहां ढीला होना चाहिए ढीला हो, जहां कवरिंग हो होना चाहिए वहां कवरिंग हो, और ऐसा लिबास नहीं होना चाहिए जो हमारे जिस्म को ज्यादा नुमाया करने वाला हो, ज्यादा पुरकशिश बनाने वाला हो, ये चीज भी ममनू हो जाएगी। तो ला तक़रबुज़ ज़िना के लिए दूसरा जो मुतालबा अल्लाह ताला ने रखा है वो ये है। तीसरा मुतालबा अल्लाह ताला ने ये किया है कि हम जब भी हमारी औरतें जो हैं बाहर निकलें मर्दों में जाएं तो वो बनाओ श्रृंगार को जाहिर ना करें, यानी मेकअप करके दूसरों के सामने जाना, बन संवर के दूसरों के सामने जाना, बिलखसूस जिनको हम आम तौर से नामहरम कहते हैं इनके सामने जाना, ये तीसरा बड़ा मुतालबा है। यानी गोया खुलासा क्या हुआ कि अगर हम बड़ी गुनाह से बचना चाहते हैं, जिसको कुरान मजीद जिना कहता है, इससे बचना चाहते हैं तो हमारे लिए लाजिम है कि हम ये पाबंदियां इख्तियार करें। हमारी औरतें अपना बनाव सिंगार दूसरे मर्दों पर जाहिर ना करें। हम दोनों मर्द भी और औरतें भी हयादार लिबास पहने, हमारी निगाहों में हया हो। तीसरी बात, अल्लाह ताला के रसूल ने यह फरमाई है कि मर्द और औरत अलग अलग ना बैठे, यानी तन्हाई में इकट्ठे ना बैठे। मुराद यह है कि एक ना महरम मर्द और एक ना महरम औरत तन्हाई में किसी जगह इकट्ठे ना हो, ताकि उनके अंदर ये मैलानत पैदा ना हो। तो ये कानून साजी की गई है ताकि हम उस जगह तक ना पहुंचे कि फिर हम एक बड़े गुनाह का इर्तकाब कर जाएं जिसकी सजा हमेशा की दोजख है। अब यहां यह सवाल पैदा हो सकता है किसी के जहन में कि ये बड़ा गुनाह कैसे है। जहां अल्लाह ताला ने इसको मना किया है सूरह बनी इसराइल में, तो वहां फरमाया है इन्नहु काना फाहिशतन वसा असबीला। पहली बात यह फरमाई कि ये फाहिशा है। फाहिशा के लफ्ज के फाहिशा हम पढ़ चुके हैं, कुरान मजीद के मुताबिक ये कबीरा गुनाहों में से है। इसके अंदर हमने ये जाना था कि फोश बातें भी शामिल हैं, इसके अंदर हमने ये जाना था जिना भी शामिल है। कि बेलिबासी और उरियानी भी शामिल है। ये फाहिशा की सारी चीजें जब गुनाह हैं तो जिना खुद ब खुद गुनाह हो। यानी फाहिशा कहने से मुराद अल्लाह ताला की ये है कि ये इंसानी जमीर के अंदर और खुदा की शरीयत के अंदर और इंसान की बनाई हुई फितरत के अंदर जितना भी दीनी तसव्वुर और शऊर रखा गया है, हर मुआशरे के अफराद के अंदर इसका ये एहसास पाया जाता है कि ये गुनाह है, और अल्लाह ताला ने भी इसको गुनाह ही करार दिया है। तो ये पहला इसके बारे में फरमाया। दूसरा फरमाया कि सा सबीला, ये दुरुस्त रास्ता नहीं है, ये निहायत बुरा रास्ता है। रास्ते से मुराद क्या है, यानी जिंदगी गुजारने का रास्ता। इस्लाम ये चाहता है कि एक खानदानी निजाम वजूद में आए। खानदानी निजाम जो मियां बीवी और बच्चों पर मुश्तमिल होता है, ये वजूद में आए, क्योंकि जब ये वजूद में आएगा तो इसके अंदर पाक दामनी और इफ्फत को रवाज होगा। और अगर इस खानदान वजूद में ना आए ये वाला जो इस्लाम चाहता है, तो फिर बेराहरवी का जमाना पैदा होता है और बेराहरवी का चलन होता है। और ये याद रखिए कि जो लोग तकवा और तज़किया नफ्स के तालिब हैं, जो अपने अंदर ये नेकियां पैदा करना चाहते हैं, उनके लिए एक आरिफों की बात है कि औरत शादी से पहले तकवे से दूर ले जाती है और औरत शादी के बाद यानी बीवी तकवे के करीब लाती है। इसीलिए कुरान मजीद को लिबास कहा है कि मर्द मियाँ और बीवी एक दूसरे के लिए लिबास है, यानी वो एक दूसरे को ढांप लेते हैं मुआशरे से, बाहर निकलने से, गलत जगहों पे जाने से वो एक दूसरे के लिए रुकावट बनते हैं, क्योंकि इंसान की जो एहतियाजें हैं जो हाजात हैं वो पूरी हो जाती हैं। और ये जो चीज़ है ये इंसान के अंदर वो बालीदगी पैदा करती है, वो बुलंद हौसलगी पैदा करती है कि वो अपने बीवी के सहारे पर और बीवी अपने शोहर के सहारे पर बहुत सारी आजमाइशों से आराम से सुरखरू गुजर जाती है। तो ये चीज़ अल्लाह ताला ने इसलिए रखी है कि हमारा माशरती निज़ाम खानदान पे खड़ा हो। जिन जिन सोसाइटीज़ में आप उठाकर देख लीजिए कि जहां फैमिली सिस्टम को कमज़ोर किया गया है, वहां बेरारवी आम हुई है, और जब बेरारवी आम होती है तो माशरे में वो अजीबोगरीब किस्म की सूरत हाल पैदा हो जाती है कि जवान के लिए तो हर घर में जगह है लेकिन बूढ़े के लिए नहीं होती। माँ बाप तरस जाते हैं, क्योंकि जब बीवी नहीं बनी, जब वो बंधन नहीं वजूद में आया जो घर को जोड़ के रखता है, तो कौन होता है जो अपनी बूढ़ी माँ का जिम्मेदारी उठाए, कौन बहू है जो उसकी खिदमत के लिए तैयार रहे, कौन बेटा है जो अपने अपने बूढ़े बाप के लिए मारा मारा फिरता रहे, अपने कंधों पर उठाए फिरे, ये इस खानदानी निजाम की बरकत है जिसके अंदर हर दौर के फर्द के लिए रहने की जगह है। अगर हम इसको जना वाले मुआशरे में ढाल दें तो फिर बड़े बूढ़ों के लिए कोई जगह नहीं। वही औरत जिसके हकूक के लिए तहरीके नस्वा चलाई जाती है, वही औरत जिसके हकूक के लिए पता नहीं क्या क्या पापड़ बेले जा रहे हैं, लेकिन इन लोगों के पास जब जाते हैं हम तो वो कहते हैं कि मुआशरे में आज़ादी होनी चाहिए। जब आज़ादी आ जाएगी तो जना का मुआशरा वजूद में आएगा, और जना के मुआशरे से कभी भी घर नहीं बनते। बेरारबी वाले मुआशरे उठाकर देख लीजिए कि वहां पे तलाक का रेट ज्यादा होगा, वहां झगड़े ज्यादा होंगे, इस तरह की चीजें ज्यादा हो जाएंगी, जिसकी वजह से वो मुआशरती जिम्मेदारियां जो औलाद पे आती हैं बाप के हवाले से, माँ के हवाले से, वो उठाने वाला कोई नहीं रहता। तो इस्लाम एक ऐसा जाब्ता देना चाहता है कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा और बुढ़ापे की वो आखिरी हदें जिसमें इंसान खुद उठ के अपनी हाजात पूरी नहीं कर सकता, उसमें भी उसको सहारा फराहम रहे। ये खुदाए खालिक कायनात का बनाया हुआ जाब्ता है जिसमें वो चाहता है कि हर उसकी मखलूक का हर हर फर्द अपनी हर हर स्टेज पे, अपने जिंदगी के हर हर दौर में उसके लिए बच्चे फराहम रहें, उसके लिए सहारे फराहम रहें, उसके लिए वो बाजू फराहम रहें जो उसको शफकत से, उसकी मोहब्बत के साथ, उसको हर कदम पे सहारा बन के उसके साथ साथ चलें। जबकि आज़ाद मुआशरों में ऐसी सूरत नहीं होती, वहाँ फिर ओल्ड हाउसेज वजूद में आते हैं और ऐसी ऐसी दास्तानी रकम होती हैं कि खुदा पना उनके नफसियाती मसाइल क्या हैं, उनके अजियत नाकी के सह सह के और तन्हाई का शिकार रह रह कर क्या क्या बीमारियाँ वजूद में आ रही हैं, वो हमारे देहाती मुआशरों में भी नहीं होती, जिनमें बिल्कुल तालीम नहीं होती लोगों को, बस वो सादा तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन चूंकि फैमिली का सिस्टम इतना पुख्ता है, स्ट्रांग है कि बूढ़ों के लिए भी जगह है, और नहायत जाहिल किस्म का, उजड़ किस्म का अगर कोई बेटा पैदा भी हो गया है तो तब भी वो इतना तो जरूर करता है कि अपने ड्यूड़ी ही में से ही बाप को चारपाई बिछा देता है, जिसका फायदा ये होता है कि वो बेघर नहीं होता, वो धक्के नहीं खाता। लेकिन जैसे जैसे हम अपने माशरे में इन आज़ादी की कदरों को जो इस्लाम से हटकर हैं, जो खानदानी निज़ाम को तोड़ने वाली है, ला रहे हैं, तो उसका नतीजा ये निकल रहा है कि हम भी, हमारे बूढ़े भी, हमारी बूढ़ियाँ भी उन चीज़ों से महरूम हो रही हैं जिनको मोहब्बत, शफकत, और जिसको कुरान मजीद ने वालदैन के साथ हुस्न सलूक में फरमाया था कि तुम्हारे शफकत भरे बाजू उनके सहारे के लिए हर वक्त तैयार रहें, झुके रहें, ताकि वो हमारे उनके हमारे उनके हम ताकि हमारे बाजू उनके लिए हर हर गाम पे, हर हर मौके पर, हर हर मुश्किल में, हर हर नाजुक मौके पर उनके काम आए। तो ये फहशा जो है ये सिर्फ ये नहीं है कि एक गुनाह है, बल्कि कुरान मजीद ये फरमा रहा है कि ये एक ऐसा रास्ता है जो मुआशरे के अंदर फसाद लेके आता है, मुआशरे की चूलों को तोड़ देता है, हिला के रख देता है, इसके अंदर एक ऐसा थरथरी सी पैदा कर देता है, ऐसा जवाल सा ले आता है कि इसकी अकदार, इसकी इफ्फत, इसकी इसके अंदर इंसानी एहतराम, इसके अंदर माँ बाप का मुकाम, इसके अंदर बच्चों की और अपनी हैसियत सब बर्बाद होकर रह जाती है। बीवी बीवी नहीं रहती, शोहर शोहर नहीं रहता, बाप बाप नहीं रहता, बेटा बेटा नहीं रहता, और ये सूरत हाल सिर्फ इस वजह से होती है कि हम शादी के मिजाज को ख़त्म करते हैं और बेरहरवी के मिजाज को अपना लेते हैं। तो मेरी दरख्वास्त आप सब साथियों से, मुसलमान भाइयों से और बहनों से ये है कि अपनी ज़िंदगियों के अंदर इफ़्फ़त को परवान चढ़ाएं, ताकि हम खुदा के यहाँ भी सुरखरू हों और यहाँ भी एक अच्छी माशरत, जिसके तारीफ कुरान मजीद ने की है कि ये पाक दामन लोगों का मुआशरा होगा। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।